Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
धन्यवाद निशित. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा समाचार आप तक लाते हैं और उन पर चर्चा भी करते हैं. चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित है आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया. विशाल जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
धन्यवाद सोनू जी.
और अब शुरुआत में हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं निशित कुमार.
Headlines: Benchmark domestic indices end on a flat note. Sensex slips 20 points. Nifty settles at 25,939. India has boarded Reform Express, says Prime Minister Narendra Modi. Adds building Viksit Bharat is the pole star of country's development trajectory. And in the Indian bullion market, gold and silver prices surge.
प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक में कोई खास बदलाव नहीं. सेंसेक्स में 20 अंकों की गिरावट. निफ्टी 25,939 पर हुआ बंद. भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने. उन्होंने ये भी कहा कि देश की विकास यात्रा का ध्रुव तारा विकसित भारत का निर्माण है. और भारतीय सराफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में आया उछाल.
And before we proceed any further, here is a message for our listeners. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
और अब चलें शेयर बाजार की ओर. प्रमुख घरेलू शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज सीमित दायरे में हुए कारोबार के बाद बिना किसी खास बदलाव के बंद हुए. कमजोर वैश्विक संकेतों के चलते बाजारों की शुरुआत कमजोर रही. हालांकि वे शुरुआती गिरावट से उबर गए, लेकिन फिर सूचकांक इस गति को कायम नहीं रख सके और सत्र के दौरान तेजी और मंदी के बीच झूलते रहे. कारोबार की समाप्ति पर सेंसेक्स 20 अंकों की गिरावट से 84,675 पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 3 अंकों की मामूली गिरावट से 25,939 पर बंद हुआ. बंबई शेयर बाजार में व्यापक बाजार सूचकांक भी आज गिरावट में रहे. मिड कैप सूचकांक मामूली नुकसान पर और स्मॉल कैप सूचकांक 0.2% गिरकर बंद हुआ.
The benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, ended flat in a range-bound trade today. Markets opened lower on weak global cues but recovered their early losses. However, the indices were unable to sustain momentum and experience intraday swings between gains and losses throughout the session. The Sensex dipped 20 points to close at 84,675, while the Nifty slipped marginally by 3 points to settle at 25,939. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange also ended in the negative zone. The mid-cap index settled marginally down and the small-cap index lost 0.2%.
सेंसेक्स में शामिल 30 में से 17 कंपनियों के शेयर मंदी में रहे. सबसे अधिक गिरने वाले शेयरों में एटर्नल 2.1% लुढ़क गया. इन्फोसिस के शेयर में लगभग 1.3% गिरावट आई और एशियन पेंट्स के शेयर में 1.1% गिरावट आई. सबसे अधिक बढ़ने वाले शेयरों में टाटा स्टील और महिंद्रा एंड महिंद्रा दोनों के शेयर 2% के उछाल में रहे. बजाज फिनसर्व लिमिटेड का शेयर 1.6% से अधिक बढ़ गया और एक्सिस बैंक के शेयर में 1.1% से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई.
And across the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 12 out of 22 sectors registered losses. Among the top laggards, IT as well as consumer durables dropped 0.8%, focused IT dipped almost 0.8% and realty lost over 0.7%. In the gainers, metal climbed 1.9%, PSU Bank gained 1.8% and auto rose 1%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative as shares of 2,260 companies declined 1,918 advanced and 169 remain unchanged.
करेंसी की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 19 पैसे मजबूत हुआ और 89.78 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. छह प्रमुख वैश्विक मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 97.99 पर था. विशाल, क्या कहेंगे आप सेंसेक्स की धारणा के बारे में? आज लगभग फ्लैट रहा है लेकिन पांचवा दिन है जब गिरावट आई है बाजार में. ईयर एंड में क्या ये एक स्वाभाविक प्रदर्शन है बाजार का? वॉल्यूम्स भी लो है, कैसे आप आंकेंगे?
देखिए सोनू जी, सबसे पहली बात तो कि हर साल का अंत एक जैसा नहीं होता है और जो मुद्दे हैं और जो कारण हैं वो स्वाभाविक तौर से बदलते रहते हैं, हर रोज बदलते हैं बाजार में. तो मैं कहूंगा कि जिस तरह से फ्लैट प्रदर्शन आज बाजार कर रहा है उसमें सबसे बड़ा कारण इस बात का माना जाता है कि कोई स्पेसिफिक सब्सटेंशियल क्यूज मार्केट को कहीं से नहीं मिले, ना ही डोमेस्टिक मार्केट से, डोमेस्टिक हैपनिंग से, ना ही कोई ग्लोबल इंटरनेशनल क्यूज मिले हैं. शायद इन्वेस्टर्स और जो जिसे कहें कि शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले जो लोग हैं वो, और खासतौर पे बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कुछ और इस तरह के क्यूज का, चाहे वो भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार वार्ता है उससे संबंधित हो या फिर थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट आने अभी शुरू होंगे. और शायद थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच है, लेकिन अगर सेक्टर वाइज देखें जैसा कि आप लोगों ने भी बताया तो तीन सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने आज फिर एक बार ट्रेंड के विपरीत जाके प्रदर्शन किया है. ऑटो की बात करें उसका सीधा सीधा नतीजा जो ऑटो सेक्टर में देखने को मिल रहा है वो इस बात का है कि IIP के जो आंकड़े आए हैं उनसे ऑटो सेक्टर में थोड़ी सी जैसे कहा जाए कि राहत की सांस है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ है. अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात की जाए तो उनकी जो एसेट्स की रिपोर्ट है और खासतौर पे उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको लेके अभी कोई चिंता की बात नहीं है. मेटल्स एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मेटल्स में जो उछाल लगभग आया है 2% के आसपास वो कॉपर और एल्यूमिनियम के चलते आया है और कॉपर से जुड़े अगर स्टॉक्स पर एक हम पिछले 90 दिन में भी नजर डालें तो लगातार उनमें उछाल आता जा रहा है, चाहे बाजार साइडवेज रहे, चाहे बाजार गिरे या चाहे बाजार उठे. और ये कुछ अच्छी बात है लेकिन मेरा मानना है कि साल का एक दिन और बचा है और शायद कुछ क्यूज मिले और नए साल की शुरुआत शायद नए तरीके से.
जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स भी बहुत ऊंचाई पर है तो.
जी बिल्कुल, देखिए ना केवल कॉपर और एल्युमिनियम बल्कि सोने चांदी की बात करें तो आप आगे कार्यक्रम में सही जो आंकड़े हैं वो बताएंगे, लेकिन सोने चांदी की बात करें तो उन्होंने जो इन्वेस्टर्स रहे हैं, जो अर्ली इन्वेस्टर्स रहे हैं उनको मालामाल जरूर किया है. हालांकि किस तरह का एक डायरेक्शन रहेगा, किस तरह की ट्रेजेक्ट्री रहेगी उसको प्रिडिक्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हमेशा बाजार में अगर कॉशियस अप्रोच लेके चलें तो वो समझदारी मानी जाती.
बट विशाल, इवन एज वी डिस्कस दिस एंड लुकिंग एट द फ्लैट मार्केट्स दैट वी हैव बीन विटनेसिंग ओवर सम पीरियड नाउ, यू नो द पीस टॉक्स व्हिच हैव हैपेंड यू नो इन फ्लोरिडा बिटवीन द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट एंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप द US प्रेसिडेंट. And of course, we all of us know that the U.S. President Donald Trump's tantrums, which have been happening over the past 1 year or so now, nothing coming really very positive inside for some time at least now. So can we say, you know, to some extent that the markets will remain flat mostly for some more time to come?
Well, yes, it is likely. For example, on Wednesday, it is likely the trend might continue. And as I'm saying, you know, certain sectors will respond to sector-specific cues rather than overall larger cues because there is no substantial concrete global or, you know, domestic cue which has been coming in. The IIP data was one, but that we've seen, you know, resulting in the uptick in the auto sector in today's market. And you're rightly pointing out, you know, there's been dialogue going on. There's been a talk about peace and all that. Between Russia and Ukraine, the peace deal which is being negotiated by United States of America. But it's all to and fro, you know, too much back and forth which is happening. There's no concrete, sort of picture which is emerging as of now, and that doesn't seem to qualify positively as far as stock markets are concerned. They will look at a particular piece of news either in a positive manner or in a negative manner, and if it is in a gray area sort of thing, no strong cues, then of course we'll see markets going sideways or staying flat.
विशाल जी, हालांकि बहुत चैलेंजेस रहे इस वर्ष में, जैसा कि अभी यूएस की बात हो रही थी, यूएस टैरिफ्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस, तरह तरह के चैलेंजेस थे, उसके बावजूद हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है वो बहुत स्ट्रांग आए हैं और लगभग 10% पूरे वर्ष में सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल आया है. लेकिन अगर हम बाकी मार्केट से कंपेयर करें तो वो तुलनात्मक रूप से कम है. आपको लगता है कि शायद इसकी वजह यह है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो ज्यादा एआई, जहां पे एआई कंपनीज जिन बाजारों में ज्यादा डोमिनेंट है, वहां ज्यादा आकर्षित हैं फिलहाल?
देखिए, ये बदलती तकनीक का युग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो स्पीड है उसे मैच कर पाना हर एक सेक्टर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, और उसी कतार में मैं स्टॉक मार्केट्स को भी गिनता हूं, शेयर बाजार को भी गिनता हूं. रिस्पॉन्ड कर रही हैं मार्केट्स, रिएक्ट कर रही हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स रिएक्ट कर रहे हैं. और आपने सही कहा, एफआईआईज का अगर नेट आउटफ्लो की तरफ नजर डाल के देखें तो आज के दिन भी एफआईआईज का जो नेट फिगर थी वो आउटफ्लो की तरफ थी. यानी कि जो एक मोटे तौर पर बाकी बाजारों से जब आप कंपेयर करते हैं तो उस कंपैरिजन में थोड़ा सा 19-20 का अंतर इसलिए आता है क्योंकि पैसा अगर भारतीय बाजार से निकल के कहीं और किसी बाजार में जा रहा है तो हमारे यहां नेगेटिव हो गया, उनके यहां पॉजिटिव हो गया. लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि लगातार 5 दिन तक एफआईआईज का आउटफ्लो हुआ और फिर उसके बाद लगातार 15 दिन तक एफआईआईज का इनफ्लो भी हुआ और बड़े जबरदस्त तरीके से हुआ. तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और जिसे हम एफआईआई कहते हैं, उनका ट्रेंड सिंपल है, उनको वो शॉर्ट टर्म पे प्ले करते हैं. लॉन्ग टर्म उनकी स्ट्रेटजी जरूर रहती है, लेकिन शॉर्ट टर्म पे प्ले जरूर करते हैं वो. और अगर उनको आधा प्रतिशत भी कहीं अगर दूसरे बाजार में फायदा मिल रहा होगा तो वो जरूर दूसरे बाजार में अपना पैसा लेकर जाएंगे. लेकिन जैसे ही भारतीय बाजार की तरफ से या भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ से कोई बड़ी खबर, कोई अच्छी खबर देखने को मिलेगी, तो आप देखेंगे कि एफआईआईज की वापसी भी भारतीय बाजार में उतनी ही तेजी से होती है.
और उसके विपरीत जो उनको ओवर कॉम्पेंसेट किया है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो एसआईपीज आए हैं बाजार में, आपको लगता है वो ट्रेंड कंटिन्यूड रहेगा 2026 में?
बिल्कुल रहेगा, क्योंकि जो एक इंडिकेशंस मिल रही हैं, और आपने सही कहा कि डीआईआईज ने एक कुशन के तौर पर काम किया है, ना केवल बाजार के लिए बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी. और जिस तरह की नए इन्वेस्टर्स जो हैं, जिन्हें हम नई पीढ़ी के इन्वेस्टर कहा जाए, जिन्होंने शायद पिछले 3 से 4 से 5 साल में ही अपना डीमैट अकाउंट खोला हो, शायद साल भर पहले ही खोला हो, उनकी संख्या में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और केवल शेयर बाजार की बात नहीं है, म्यूचुअल फंड्स में भी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसके अलावा जो आप ओवरऑल इन्वेस्टर सिनेरियो अगर डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें तो लगभग हर मैट्रिक्स पे पॉजिटिव रहा है. और फंडामेंटल्स की जहां तक बात करें तो वो आंकड़े जब हर तिमाही और छमाही में आते हैं तो वो उसको और मजबूत बताते हैं कि जो बात कही जाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, वो दरअसल दिखते हैं कि वो स्ट्रांग है.
विशाल, इवन एज वी टॉक अबाउट द एफआईआईज आउटफ्लो एंड द डीआईआईज ऑफ कोर्स cushioning the impact and all, let's not forget that the flurry of IPO activities, the primary markets, have also kind of, to some extent, if you may say, kind of affected the secondary market as well. How much do you subscribe to this view?
Well, I do subscribe to the view because, you know, I'll give you a small example. You know, a masala company from a tier 2 city, based in tier 2 city, comes out with an IPO and is oversubscribed to the tune of 32 to 35 crore rupees. Now, that itself, shows the kind of enthusiasm which is there in the DIIs. The reason why all of us keep on saying that DIIs are acting as a cushion is not just based on the numbers which we see in front of, our eyes on the screen or in the papers. It's evident. The confidence is evident in the market. The confidence is evident outside the market. Imagine, maybe 10 years ago, 20 years ago, would a masala company based in a tier 2 city would be coming out with an IPO? And if it did, would it be oversubscribed? Unless there is something wrong with it. So again. These all are indicators that the confidence is high, the fundamentals is high, fundamentals are strong, and yes, FIIs are important, yes, global cues are important, yes, what happens in the global economy and the global economic world is equally important to us as well. But to an extent, we are protected by the domestic consumer, the domestic investor, and of course, the continuation of policy.
इस पॉजिटिव नोट पर अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का. प्रमुख एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा. हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक लगभग 0.9% बढ़कर बंद हुआ और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में लगभग 0.5% की बढ़त दर्ज हुई. दूसरी ओर जापान का निकेई 225 सूचकांक 0.4% के नुकसान में रहा और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.1% से अधिक नुकसान में रहा. हालांकि चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो वहां आज बढ़त का रुख था. दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स 0.8% से अधिक बढ़ गया था. लंदन के फुटसी में लगभग 0.5% की तेजी थी और फ्रांस का कैक 0.4% से अधिक की बढ़त पर था.
And moving on to the US markets, major US indices ended lower yesterday, dragged by heavyweight technology stocks. The Dow Jones Industrial Average, as well as the NASDAQ Composite Indices, lost 0.5%, and the S&P 500 slipped over 0.3%. Meanwhile, on the macroeconomic front, minutes from the Federal Reserve's previous meeting and the weekly jobless claims data will be in focus during an otherwise data-light week. And on to some other stories. Prime Minister Narendra Modi today said that India has boarded the Reform Express and emerged as the center of global attention. Mr. Modi shared his thoughts in an article posted on social media. The Prime Minister said today that the world sees India with hope and confidence. Mr. Modi said that 2025 will be remembered as a year of reforms for India, as it witnessed path-breaking changes across various sectors which have added momentum to the country's growth journey. He said that the government modernized institutions, simplified governance, and strengthened the foundations for long-term inclusive growth. Prime Minister said that these reforms are aimed towards building a prosperous and self-reliant India. He added that building a Viksit Bharat is the pole star of India's development trajectory. Vishal, the Honorable Prime Minister today on a social media post, a very longish and a lengthy post, has kind of enumerated all the initiatives and all the developments which has happened over the past year or so. He has highlighted mostly, he opens his post with the GST reforms, which have kind of facilitated the ease of doing business, which has kind of facilitated the middle class, the traders, the business class as well. And he mentions about the 100% FDI inflow insurance sector and the securities market reforms as well. He talks about the maritime blue economy reforms which has happened, and also the historic labor reform. Let's not forget the historic labor reform. It was scattered over 26 or 27, if I'm not wrong, different labor laws. It has been codified and kind of consolidated into just 4 codes now, which really would, kind of facilitate business and the workforce alike. So besides that, he also talks about the nuclear energy reform, the Shanti Bill, which was just passed, some time back. That's really remarkable and a game changer, if you may say so. And the G. Ramji Bill, the Rural Employment Guarantee, which replaces the earlier one, and the education reforms and many others to say, the time does not permit to tell me more about it, in this limited slot that we have. But how do you see, basically the reforms and the initiatives, the major reforms which have kind of come in this year?
Well, Anishit, when Modi government was voted to power for the third consecutive term, one of the cornerstone of the agenda in the third term was to go really full throttle on the reforms part. In the previous two terms, there were several other steps which were taken in terms of, you know, reforms to various other sectors as well. But a renewed push was required when you look at the sectoral aspects. And all the reforms which you mentioned, I'll briefly, you know, point them sector-wise. That becomes, the picture becomes really clear as to what Prime Minister is trying to indicate in that social media post. Now, look at taxation, the GST reforms, the income tax reforms. Then you go to the rural sector, the GRAMG bill, and of course, you know, various other steps which have been taken to aid the rural population in terms of when you look at the social welfare. There are social welfare schemes and reforms which have been brought in. The labor codes, the four labor codes, are the biggest example. Then you look at the defense sector as well. There have been reforms there also in terms of pushing, you know, self-reliance in the defense sector. There have been reforms in the space sector also. And they've been continuing. Not necessarily all of them announced this year, but they've been continuing step by step, one by one.
Right.
Then insurance sector, you're talking about FDI, 100% FDI in insurance sector, so on and so forth. Blue water economy has been talked about a lot. Now we're talking about you know, the hard facts, the strong contours of how it should look like, what it should work like, and of course, you know, as far as maritime sector is concerned, not only from a defense perspective, from a security perspective, but from an economic perspective,
yes,
as well.
Yes.
We need to make that mark. We're surrounded by water on three sides, so of course we need to take very due benefit of that as well. So all these areas, all these sectors which we are talking about, and as you pointed out, there's a time constraint, there'll be a lot more, the list will be long, but largely the picture which emerges is that no stone is left unturned. There is a consistency in policies, and that again takes us back to what we were saying earlier, the strong fundamentals of the economy, or what appeals to the FIIs or DIIs, what appeals to the investors as well. So ultimately, you know, whatever might be happening in the global economic world, whatever might be happening in terms of the conflicts, in terms of, you know, trade tariffs, in terms of tough trade talks between countries, including India as well, and the FTA agreements and all that. But if we can put our house in order, then of course we will have an edge in on the global stage, on the world stage. That seems to be the message, and that's exactly seems to be something which is now being put into practice through reforms.
Now, even as you talk about the FTAs, as 2025 comes to a close, it is worth reflecting on India's impressive strides in the field of trade agreements this year. The country secured major free trade agreements, emphasizing its position on the global trade stage. We have a report.
During the year, India concluded three major trade pacts: the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement in July, the India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement on 18 December, and the India-New Zealand Free Trade Agreement on 22 December. Further, the India-European Free Trade Association Trade and Economic Partnership Agreement, which was signed in New Delhi in March last year, came into force in October. Australia is also set to provide duty-free access to all Indian exports from 1st of January. This is part of the phased implementation under the Economic Cooperation and Trade Agreement between India and Australia, signed in April 2022. Beyond these concluded agreements, India is actively negotiating with several major economies, including the United States, the European Union, and Peru. These agreements are unlocking new opportunities across diverse sectors while strengthening India's integration into global value chains. Through these agreements, India is also focusing on export diversification to enhance trade stability, boost competitiveness, and reinforce its long-term economic resilience amid global uncertainties. Ayushi Singh for Market Mantra.
So, हमने ये रिपोर्ट सुनी एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन के लिए जो एफर्ट्स किए हैं भारत सरकार ने, जो इतने एफटीए साइन हुए हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन्स को हमने अपने मजबूत करने के जो एफर्ट्स किए हैं, कैसे देखते हैं आप? और इसके साथ साथ ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो कदम उठाए गए हैं और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सशक्त करने के जो कदम उठाए गए हैं?
देखिए, इसको इस तरह से समझिए सोनू जी, कि इस वक्त पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, खासतौर पर जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो सब अपने हितों की रक्षा के लिए इनवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ चल रही हैं। यानी कि मी फर्स्ट, कोई भी देश है, कोई भी इकोनॉमी है, वो पहले अपने हितों की रक्षा कर रहा है, फिर उसके बाद ग्लोबल जो कंसर्न्स हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में भारत के लिए ये लाजमी था, ये जरूरी था कि वो एक इंडिविजुअल अप्रोच के साथ इन सब देशों को, इन सब ब्लॉक्स को देखे। और हमारे एग्रीमेंट्स पहले भी रहे हैं लेकिन उनको रिन्यू करने की आवश्यकता थी, उनको रीलुक करने की आवश्यकता थी, कई जगह नहीं थे तो वहां पर नए एग्रीमेंट्स लाने की आवश्यकता थी। और अगर आप इन सब एग्रीमेंट्स की ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से देखें तो ये सोचिए कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों के साथ, यूरोपियन कॉन्टिनेंट हम यूरोपियन यूनियन के साथ, क्योंकि ब्रिटेन अब ईयू का हिस्सा नहीं है तो ब्रिटेन के साथ अलग से एक समझौता होना जरूरी था इसलिए ब्रिटेन के साथ, अब फ्रांस के साथ भी बातचीत चल रही है, जापान के साथ भी चल रही है, अमेरिका के साथ भी चल रही है, तो ये हमने एक लार्जली हम पूरे विश्व पटल पर एक अपने तरीके से चीजों को देख रहे हैं और एक एक करके समझौता।
बिल्कुल, लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता की और केंद्रीय बजट 2026-27 से पहले सुझावों के लिए प्रमुख अर्थशास्त्रियों तथा क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों से बातचीत की। ये बैठक देश की आर्थिक स्थिति और भविष्य की प्राथमिकताओं के बारे में विचार और आकलन साझा करने का माध्यम बनेगी।
And in some other stories, the banking sector remained resilient in the financial year 2025, supported by double-digit expansion in balance sheets, even as the pace of growth moderated compared with the previous financial year. The Reserve Bank of India's report on trends and progress of banking in India 2024-25 highlighted continued resilience of the banking sector, backed by strong balance sheet growth, improved asset quality, and robust profitability.
और अब चलें कमोडिटीज की ओर।
यस, एंड द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रोज टुडे अमिड डेंटेड होप्स ऑफ रशिया यूक्रेन पीस डील। ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग 0.3% अप एट $62.12 पर बैरल एंड द WTI क्रूड वाज ट्रेडिंग ओवर 0.3% अप एट $58.28 पर बैरल व्हेन रिपोर्ट्स लास्ट केम इन। एंड ऑन टू द बुलियन मार्केट। In the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading at 1.4% up at 1,37,130 rupees per 10 grams, and silver was trading over 6% up at 2,38,000 rupees per kilogram a short while ago.
उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिन के कारोबार में फरवरी अनुबंध वाला सोना 1.4% से अधिक वृद्धि दर्ज करता हुआ 1,36,870 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। मार्च अनुबंध वाली चांदी लगभग 6% की तेजी से 2,37,894 रुपए प्रति किलो पर थी। हम ऑलरेडी प्रेशियस मेटल्स की तेजी पर चर्चा कर चुके हैं। जो आरबीआई के आया है रिपोर्ट, एनपीएज इतने लो लेवल्स पे आए हैं, इसको आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं?
देखिए, बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और उससे साफ ये पता चलता है कि भारतीय बैंकों की जो दशा है वो बहुत मजबूत है और दिशा भी बहुत सही डायरेक्शन में, दिशा में चल रहे हैं। हालांकि कुछ एक दो बातें आरबीआई ने कही हैं और वो टेक्नोलॉजी के चलते कही हैं, कॉशन किया है कि नई टेक्नोलॉजी के चलते जो ग्राहक हैं बैंकों के, उनको बैंकों के साथ जो उनका व्यवहार है, यानी कि जो उनको कामकाज करना है बैंकों से, उसका नजरिया, ग्राहक का नजरिया, वो कामकाज करने का तरीका, उस सब में बहुत मूलभूत बदलाव पहले ही आ चुका है और भी आगे बदलाव आने की उम्मीद है। ऐसे में साइबर रिस्क बढ़ती हैं तो उनको लेकर आरबीआई ने जरूर चेताया है कि सभी बैंकों को अपना जो साइबर फ्रॉड, एंटी साइबर फ्रॉड मैकेनिज्म है या फिर अपने जो डिजिटल जो तरीका है ग्राहकों से जुड़ने का, उनको दुरुस्त रखना चाहिए और उसकी टेक्निकल सेहत जो है उसको जरूर ध्यान देना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात,
बहुत ही जरूरी ये तो एडवाइजरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विशाल जी शामिल होने के लिए कार्यक्रम में और इतनी बहुमूल्य जानकारी देने।
थैंक्स विशाल फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड ऑन अ फ्लैट नोट। सेंसेक्स स्लिप्स 20 पॉइंट्स। निफ्टी सेटलर्स 25,939। इंडिया हैज बोर्डेड द रिफॉर्म एक्सप्रेस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी adds building Viksit Bharat is the pole star of country's development trajectory. And in the Indian bullion market, gold and silver prices surge. And that's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. It's goodbye.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
August 17th.